फासीवाद और साम्यवाद दोनों ही विचारधारा 19वीं सदी के लोकतंत्रवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई और दोनों ही हमारे युग की एक ऐसी प्रभावशाली विचारधाराएं हैं जिन्होंने संबंधित राष्ट्रों के स्वरूप को ही बदल दिया। समान परिस्थितियों की उपज होने के कारण यदि एक और इन विचारधाराओं में कुछ समानताएं हैं तो दूसरी ओर इनमें अनेक असमानताएं भी हैं। समानताएं, इस दोनों विचारधाराओं की समानताओं का विवेचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, दोनों व्यवस्थाएं प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के परिणाम। यद्यपि एक विचारधारा के रूप में साम्यवाद का अभ्युदय कार्ल मार्क्स के दर्शन के अंतर्गत 19वीं सदी में हो गया था, किंतु साम्यवाद को ही वास्तविकता का रूप प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में ही प्राप्त हुआ। साम्यवाद तथा फासीवाद दोनों का अभ्युदय एक लगभग एक साथ हुआ तथा समान परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ। महायुद्ध के कारण सोवियत रूस तथा इटली दोनों ही देशों में अव्यवस्था तथा निराशा थी, जिससे लाभ उठाकर लेनिन और मुसोलिनी ने इन दोनों विचारधाराओं को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। दूसरा, विचारधाराओं का मूल स्रोत हीगलवाद। दोनों ही विचारधाराएं राजनीति में अपना जन्म हीगल के उग्र आदर्शवाद दर्शन से ग्रहण करती हैं। मार्क्स हीगल की दंडनात्मक प्रणाली के आधार पर इतिहास का विश्लेषण करता है तो मुसोलिनी हीगल के राष्ट्रपूजा की धारणा को और भी आगे ले जाता है। इस प्रकार इन दोनों ही विचारधाराओं का उद्गम स्रोत हीगलवाद है। तीसरा, दोनों सर्वाधिकारवादी विचारधाराएं। ये दोनों ही विचारधाराएं सर्वाधिकारवादी हैं। इनके अनुसार राज्य की सत्ता और उसके अधिकारों की कोई सीमा नहीं तथा दोनों ही विचारधाराएं यह मानती हैं कि राज्य संस्था को व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यहाँ यह समरणीय है कि यद्यपि सैद्धांतिक रूप से साम्यवाद के अनुसार राज्य की आवश्यकता केवल संक्रमणकालीन है, लेकिन चूंकि व्यवहार में इस बात के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते कि कभी संक्रमणकालीन व्यवस्था का अंत होकर राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना हो सकेगी, इसलिए साम्यवाद को ही सर्वाधिकारवादी दर्शन कहा जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं, राज्य के असीम अधिकारों के पक्ष में होने के कारण ये दोनों ही विचारधाराएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध करती हैं। राज्य स्वतंत्र एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के नाम पर व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह सार्वजनिक हितों का बलिदान कर अपने हितों की साधना करे, यह इन दोनों ही विचारधाराओं को मान्य नहीं। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में भी ये दोनों विचारधाराएं यदभायम नीति और औद्योगिक प्रतियोगिता की उपादेयता में विश्वास नहीं करती। इनके मतानुसार समाज में आर्थिक जीवन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिससे आर्थिक व्यवस्था का संचालन सार्वजनिक हित की साधना की दृष्टि से किया जा सके। 5वां, साधनों के संबंध में समानता। दोनों ही विचारधाराएं इस बात पर सहमत हैं कि साधारणतः वैध और शांतिपूर्ण उपायों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव अवैध और हिंसक उपाय अपनाए जा सकते हैं। दोनों ही विचारधाराएं मैकियावेली के इस विचार को स्वीकार करती हैं कि राजनीति का एक महान खेल नैतिक नियमों के अनुसार नहीं खेला जा सकता। 6वां, प्रजातंत्र तथा संसदात्मक व्यवस्था में अविश्वास। दोनों ही विचारधाराएं प्रजातंत्र तथा संसदात्मक व्यवस्था में अविश्वास प्रकट करती हैं। साम्यवाद के अनुसार प्रजातंत्र सत्तेबाजी, अवसरवादिता, अनैतिकता और असमान वितरण का नाम है, जो फासीवाद इससे भी आगे बढ़कर प्रजातंत्र को सरा हुआ सब और संसद को बातों की दुकान कहता है। 7वां, एक दलीय व्यवस्था में विश्वास और विरोधियों का सफाया। इन दोनों ही विचारधाराओं की मान्यता है कि विविध राजनीतिक दलों का अस्तित्व राज्य के लिए हानिकारक है और इसलिए एक दलीय राजनीति व्यवस्था ही होनी चाहिए। इन दोनों विचारधाराओं के अनुसार समाज का वास्तविक हित तभी हो सकता है जब विरोधी दलों का दमन कर एक शक्तिशाली जो संबंधित विचारधारा पर आधारित हो किसी सर्वमान्य नेता के नेतृत्व में राज्य की बागडोर संभाले। हिटलर के जर्मनी में केवल नाजी दल और मुसोलिनी के इटली में केवल फासी दल का ही अस्तित्व था और वर्तमान समय में साम्यवादी राज्यों में केवल साम्यवादी दल का ही अस्तित्व है। व्यवहार के अंतर्गत फासीवाद और साम्यवाद राज्यों में विरोधियों का सफाया करने के लिए एक समान उपाय अपनाए जाते रहे हैं। आठवां, दोनों विचारधाराएं विस्तारवादी हैं। इनके अतिरिक्त यद्यपि सैद्धांतिक रूप में फासीवाद स्वयं को साम्राज्यवादी और साम्यवाद अपने को साम्राज्य विरोधी कहता है, लेकिन व्यवहार में इन दोनों व्यवस्थाओं के कार्यकलापों के आधार पर इन दोनों को ही विस्तारवादी कहा जा सकता है। स्वयं को साम्राज्य विरोधी कहते हुए साम्यवाद अपना लक्ष्य संपूर्ण विश्व में साम्यवाद की स्थापना घोषित करता है और अधिकांश साम्यवादी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध की असंभवता की जो घोषणा करते हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि साम्यवाद का लक्ष्य भी अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना है और यह भी एक नवीन प्रकार का साम्राज्यवाद ही है। इस प्रकार ये दोनों विचारधाराएं विस्तारवादी ही हैं। असमानताएं उपयुक्त समानताओं के होते हुए भी इन दोनों विचारधाराओं में कुछ असमानताएं हैं और ये असमानताएं इतनी प्रमुख हैं कि इन्होंने लगभग विरोधी विचारों का रूप प्रदान कर लिया है। यह तो एक तथ्य है कि इटली में फासीवाद के विकास में साम्यवादी क्रांति के भय ने एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया था। इन दोनों विचारधाराओं की मुख्य असमानताओं की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, फासीवाद नितांत अवसरवादी है विचारधारा है, साम्यवाद वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध दर्शन है। साम्यवाद एक वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध दर्शन है जबकि फासीवाद ऐसे अस्पष्ट विचारों का संग्रह मात्र है जिन्हें समय की आवश्यकता के अनुसार संग्रहित कर लिया गया है। साम्यवाद का मूल स्रोत कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन है किंतु फासीवाद के पास ऐसा कोई दार्शनिक स्रोत नहीं है। दूसरा, फासीवाद अबुद्धिवादी है साम्यवाद बुद्धिवादी। फासीवाद विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी न मानकर भावनात्मक और प्रवृत्तिवादी प्राणी माना गया है। व्यवहार में फासीवाद के द्वारा व्यक्ति के विवेक को अपील करने के बजाय उसकी भावनाओं को जागृत करके ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार फासीवाद एक भावनात्मक दर्शन है लेकिन इसके विपरीत साम्यवादी विचारधारा व्यक्ति को मूलतः विवेकहीन प्राणी मानती है। उसके अंतर्गत व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को जागृत करने का प्रयत्न किया गया है। सेवाइन के शब्दों में साम्यवादी दर्शन कभी भी बुद्धि विरोधी नहीं रहा। साम्यवाद का ईमानदारी से विश्वास था कि दंडनात्मक पद्धति तर्क का साधन है। इसके आधार पर विभिन्न कार्यों और व्यापारियों की युक्ति संगत रीति से परख की जा सकती है। तीसरा, फासीवाद आदर्शवादी है साम्यवाद भौतिकवादी। फासीवाद इस दृष्टि से एक आदर्शवादी विचारधारा है कि इस राज्य को एक नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्था मानता है और इसे रहस्यवादी स्वरूप से विभूषित करता है। इसके अतिरिक्त फासीवादियों के द्वारा सुख दुख और उपयोगिता के आदर्श को मात्र भौतिकवादी विचार कहकर इन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। दूसरी ओर साम्यवाद मूलतः और स्पष्ट रूप में एक भौतिकवादी विचारधारा है जिसका मुख्य संबंध जीवन के आर्थिक पक्ष से है और जिसके द्वारा आर्थिक परिस्थितियों को मानवीय इतिहास का सर्वप्रमुख प्रेरक शक्ति माना गया है। चौथा, फासीवाद राज्य को अत्यधिक महत्व देता है साम्यवाद राज्य का विरोध करता है। राज्य के प्रति दृष्टिकोण के विषय में भी इन दोनों विचारधाराओं में मूलभूत अंतर है। फासीवाद राज्य को अत्यधिक महत्व देता है। स्वयं मुसोलिनी के शब्दों में राज्य फासीवादी आदर्श का प्रत्यक्षीकरण है। वस्तुतः उनके लिए राज्य ही सब कुछ है। साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत राज्य का विरोध करते हुए राज्य और शासन को शोषण का साधन बतलाया गया है। साम्यवादी यद्यपि संक्रमण काल में राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसे समस्त शक्तियां भी प्रदान करते हैं, किंतु इस काल में वे राज्य की शक्ति का प्रयोग पूंजीपति वर्ग का अंत करने के लिए करते हैं और उनका अंतिम लक्ष्य एक राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। साम्यवाद की दृष्टि में राज्य एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा वह सर्वहारा वर्ग वर्ग युद्ध लड़ता है। वह एक भयंकर शस्त्र है, ऐसे अधिक कुछ नहीं। इस प्रकार फासीवाद राज्य को एक साध्य मानकर चलता है, जबकि साम्यवाद के अनुसार वह समाज को वर्गहीन बनाने का एक साधन मात्र है। पांचवा, फासीवाद वर्ग सहयोग में विश्वास करता है। साम्यवाद वर्ग संघर्ष में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संबंध के विषय में इन दोनों विचारधाराओं के दृष्टिकोण में अंतर है। साम्यवाद की मान्यता है कि विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष नितांत स्वाभाविक है और अंतिम आदर्श अवस्था की स्थापना तक इस वर्ग संघर्ष को जारी रखना चाहिए। इसलिए वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें केवल एक वर्ग हो, किंतु फासीवाद वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सहयोग के आधार पर विविध वर्गों के अस्तित्व को बनाए रखने का पक्ष पाती है। उसके अनुसार वर्गों का होना स्वाभाविक और उपयोगी है, क्योंकि सभी वर्ग अपने अपने ढंग से राष्ट्र की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। सातवां, फासीवाद पूंजीवाद का मित्र है, साम्यवाद शत्रु। फासीवाद पूंजीवाद का मित्र है। वह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर आधारित अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। उसके अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उचित है, क्योंकि इससे आर्थिक उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और समस्त राष्ट्रों का कल्याण होता है। साम्यवाद के संबंध में यह सर्वविदित है कि इसका उद्देश्य पूंजीवाद का अनवरत विरोध करना है और उसका अंत करना है। आठवां, फासीवाद धर्म समर्थक विचारधारा है, साम्यवाद धर्म विरोधी। धर्म के संबंध में भी इन दोनों विचारधाराओं में अंतर है। साम्यवाद धर्म को जनता के लिए अफीम की संज्ञा प्रदान करता है और उसके अनुसार धर्म पूंजीपतियों के लिए हाथ में दलित वर्गों को मूर्ख भीरू और अशक्त बनाने का एकमात्र साधन है। इसके विपरीत फासीवाद चर्च और धर्म को उपयोगी मानता है, क्योंकि इनका उपयोग राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाने के लिए किया जा सकता है। यद्यपि यह समन्वय है कि फासीवाद के अंतर्गत भी धर्म का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए ही किया गया है। नौवां, फासीवाद असमानता में विश्वास करता है, साम्यवाद समानता में। साम्यवाद मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है और यह साम्यवादी दर्शन का मूलाधार है, किंतु फासीवाद की मान्यता है कि मनुष्य प्रकृति से ही असमान होते हैं और वह इसी आधार पर कुलीनतंत्र का समर्थन करता है। एविस्टीन के अनुसार फासीवादी संहिता में पुरुष स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन सैनिक असैनिक नागरिकों से श्रेष्ठ है। फासिस्ट दल के सदस्य अन्य दलों से श्रेष्ठ हैं। शक्तिशाली निर्बल से श्रेष्ठ है और विजेता पराजित से श्रेष्ठ है। साम्यवाद की स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करता है और फासीवाद नारी के दासत्व में। नौवां, फासीवाद नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, साम्यवाद नहीं। फासीवाद और विशेषता नाजीवाद की, जो फासीवाद का ही रूप है, जातीय पवित्रता और नस्ल की श्रेष्ठता के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व देता है। हिटलर के द्वारा नॉर्डिक नस्ल की श्रेष्ठता का विस्तार से प्रतिपादन किया गया था। और उसकी विचारधारा का एक प्रमुख बिंदु यहूदी जाति का विरोध था। साम्यवाद जाति पवित्रता या जातीय निमनता और जातीय उच्चता के लिए किसी विचार को स्वीकार नहीं करता। साम्यवाद के अनुसार मानवीय क्षमता और चरित्र जन्म पर नहीं वरन वातावरण पर निर्भर करता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से इस प्रकार का अंतर बतलाया जाता है, किंतु वर्तमान समय में दो प्रमुख साम्यवादी राज्यों सोवियत रूस और चीन में जिस प्रकार के मतभेद और विवाद देखे जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ इस प्रकार का नारा भले ही लगा लिया जाए, किंतु व्यवहार में साम्यवाद राष्ट्रवाद की शक्तियों को परास्त नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों साम्यवादी राज्यों के पारस्परिक विवादों का मूल कारण राष्ट्रीय स्वार्थों का भेद ही है। वस्तुतः फासीवाद साम्यवाद की परस्पर असमानताएं समानताओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं असमानताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि फासीवाद साम्यवाद की उपेक्षा पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था के ही अधिक निकट है।